जब आपकी औत निधान कान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जब आव की औध निधान बने गगन दमा मा बाजे परे उन साने का खेत जुमांडे सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेल कबू न छाड़े खेत कबू न छाड़े खेत जब आव की औत निधान बने अति हिरण में तब जो पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास जब आव की औत निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जब आव की औत निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जब आव की औत निधान मरने का चाओ है मरु तहर के द्वार मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार पर हमारे बार पर हमारे बार जब निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जब आव की औत निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जब आव की औत निधान बने जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद पूर्ण परमानंद पूर्ण परमानंद जब आव की औत निधान बने अति हिरण में तब जूझ मरो जानता जगमुआ मर भी न जाने कोए ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए बहुत न मरना होए बहुत न मरना होए जब आव की औध निधान बने अति हिरन में तब जोज मरो जब आव की औध निधान बने अति जब आव की औध निधान बने बोले सोनेहा सत श्री अकाल परम सत्कार्य शासन इस संसार दे विच जदों दा संसार बने लोक जमदे आए ने मरदे आए ने जमदे रहणगे मरदे रहणगे पर इतिहास उन्हां दे बनदे हन जिहड़े कुछ करके मरदे हन पर इह मरना लोकां दे भले वास्ते दुखियां दे भले वास्ते धर्म वास्ते मजलूमां दी रखिया वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा इह सोईया कृष्णा अवतार विचों जब आव की औध निधान बने अति ही रण मैं तब जूझ मरो रण कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान लड़ना है धर्म की रखिया वास्ते मजलूमां की रखिया वास्ते और जुलम के खिलाफ लड़ना है और इस नेकी की लड़ाई विच अगर मरण का वेला आ गया तो फिर उस लड़ाई के मैदान विच शहीद भी होवांगा यह मन का चाह है क्योंकि जिसनों लड़न दा चाह नहीं जिसनों जित दा भरोसा नहीं और जिसनों मरण दी खुशी नहीं वो सूरमा नहीं सूरमा वही है जिनू जित दी आस और मरण दा चाह है। सतगुरु जी कहते हैं मैं छत्री पुत्र हाँ धर्म दी हानि होंदी धर्म की हानि होंदी देख के मजलूमा ते जुल्म होंदा देख के मैं चुप करके बह जावां तप करन लग पवां यह नहीं हो सकता। अगर मेरे सामने जुल्म होंदा है फिर मैं बह नहीं सकता शमशीर पकड़ के मैदान विच आना है और मजलूमा की रखिया करनी है भावें इस रखिया विच मैनू अपना आप क्यों ना कुर्बान करना पवे। जब आव की औध निधान बने अति हिरन में तब जूझ मरो जब आव की औध निधान बने अति हिरन में तब जूझ मरो जब आव की औध निधान बने। जद भी किसी ने जुलम के खिलाफ लड़ना चाहिया सच दे राह ते कोई चलिया उसनु औकड़ा मुश्किल आईया क्योंकि औकड़ा मुश्किल तो बगैर सच दे राह ते चलन वालिया नू मंजल नहीं मिलती। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने ए देखिया हिंदुस्तान ते मुगलां दा राज है और ए मुगल हिंदुस्तान दे लोकां ते जुल्म करदे हन। इत्थों तक हिंदुस्तान दा बादशाह औरंगजेब मुसलमान बादशाह जिसने हिंदुस्तान दे विच ए ऐलान कीता सी हिंदुस्तान दे विच हिंदू धर्म मैं नहीं रहन देना, ये औरंगजेब हिंदुआं नूं जबरदस्ती मुसलमान बना रहे है। हर पासे हाहाकार मच गई। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म की रक्षा की थी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझ लिया ऐ वेला हुण चुप करके बैठण दा नहीं, ये जिहड़ा जुल्मी बादशाह है इसका जुल्मी राज खत्म करन वास्ते हुण कृपान पकड़नी पवेगी, शस्त्र पकड़ने पैणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऊच नीच खत्म करके जाता पाता मिटा के खालसे पंथ की साजना की थी। आनंदपुर साहब पंजाब दे विच ए नगरी वसाई, जेड़ी नगरी की नींह गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने रखी सी। इस आनंदपुर साहब खालसा पंथ साजिया गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस जुल्म के खिलाफ जेड़ा जुल्म औरंगजेब करता है उहदे खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। एक पासे ए हिंदुस्तान का जुल्मी बादशाह और दूसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कुछ क सिखां दे नाल, पर वो जिहड़े गुरु नाल प्यार करते हैं, जिन्हां ने समझ लिया कि असां जुल्म के खिलाफ लड़ना है और गुरु साहिबां की फौज में हर जात हर मजहब के लोग आके शामिल होए। इत्थे ना मुसलमान का सवाल सी, ना हिंदू का, ना सिख का। गुरु साहिबां की फौज में मुसलमान भी सन, हिंदू भी सन, सिख भी सन, ऊच नीच का भी कोई फर्क नहीं सी, सब बराबर सन। इस बादशाह के जुल्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। औरंगजेब ने देखा होर ते कोई मेरे सामने आकड़ के खड़ा नहीं होया, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और इन्हां दा खालसा जिहड़ा मेरे खिलाफ लड़दा पिया है इन्हां नूं क्यों ना मैं खत्म करा। ये विचार करके औरंगजेब बादशाह ने पहाड़ी राजियां नूं नाल लैके लखां दी तादाद विच अपनी फौज दे नाल आनंदपुर साहब के किले नूं घेरा पाया। इस किले के अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सिख संगतां और गुरु साहिबां दा परिवार है, किले नूं घेरा पिया। कई महीने बीत गए। किले के अंदर हुण खाण नूं भी कुछ नहीं। किले नूं जिन्हां ने घेरा पाया सी मुगलां दीआं फौजां, पहाड़ी राजियां दीआं फौजां, वह भी हुण थक चुकियां ने। पहाड़ी राजियां ने, औरंगजेब बादशाह ने यह सुनेहा भेजिया अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब का किला खाली कर दे असी उन्हां नूं कुछ नहीं कहांगे। एक बार किला खाली करके चले जान, पावे फिर दोबारा आ जान। जद सिखा ने कहा, महाराज बादशाह कहंदा है मैं हमला नहीं करांगा, तुसी किला खाली कर दियो। पहाड़ी राजे भी कहंदे ने, ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ए औरंगजेब बादशाह जिसने अपने पिता नु कैद किया, जिसने अपने सके भरा कतल किए, जेड़ा अपने आदा नहीं बनया, ये दूसरों का भला किवें करेगा? इहदियां कसमां ते इतबार ना करो। पर कुछ सिख और संगतां वार वार कहन लगियां, नहीं महाराज, बादशाह ने कुरान शरीफ ते कसम लिख के भेजी है, किला खाली कर दियो, असी हमला नहीं करांगे। ते बादशाह मुसलमान है, कुरान शरीफ दा वो जरूर आदर करेगा। पर गुरु साहब ने कहा, भाई इस बादशाह दा कोई दीन अमान नहीं, इसने कसम तोड़नी है। पर सिख संगता ना मनिया, ता आखिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, ठीक है भाई, असी ते नहीं चाहते कि किला खाली किया जाए, पर जे तुसी सारे चाहते हो ते किला खाली कर देने हैं। पर साड़ी एक गल याद रखियो, इन्हां राजियां ने और बादशाह ने अपनियां कसमां तोड़ देनिया ने, और फिर तुसां सारियां पछताना है, और ये मौका फिर तुहाडे हाथ नहीं आना। जब आवगी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मरो, जब आवगी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मरो, जब आवगी औध निधान बने। छतरी को पूत हो बामन को नाही, कहता प्रवावत हो जो करो, हो जो करो, हो जो करो, जब आवगी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मरो, जब निधान बने। सिख संगता दा कहना मन के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किला खाली करन दा फैसला किया। कीमती समान, लिखे हुए धार्मिक ग्रंथ, और जेड़ा समान सी सारा पूठा गड्डियां ते लदया गया। एक पालकी दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे माता, माता गुजर कौर जी, जिन्हां नूं सारे प्यार नाल माता गुजरी कहिंदे हन, एक पालकी विच माता गुजरी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दो छोटे साहबजादे, एक पालकी विच माता सुंदर कौर जी, एक पालकी विच माता साहब कौर जी, एक घोड़े ते वड्डे साहबजादे साहबजादा अजीत सिंह, दूसरे घोड़े ते साहबजादा जुजार सिंह, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी घोड़े ते सवार ने, बाकी भी सिंह सूरमे घोड़िया ते सवार, और सिख संगतां ये सारे जने किले के दरवाजे को पहुंचे। कई महीनों के बाद किले का दरवाजा खुला, सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किले दे बाहर आए, चार चवेरे दुश्मन है। सर्दियां दे दिन रात का वेला, आकाश से बदलियां छाइया हैं, बिजली चमकती है, हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो रही है। कहते ने जिस वेले मुसीबत आनी हो गई, चार चपेरों कई बारी आ जाती, चार चपेरे दुश्मन। सर्दियां दे दिन बरसात का मौसम, इस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने इस काफले दे नाल किले विचों बाहर निकले हैं। हाली थोड़ी दूर गए सन, दुश्मन ने अपने वादे अपनिया कसमां तोड़ दित्तियां और गुरु साहिबां दे काफले ते हमला कर दिता। चार चपेरे दुश्मन है, एक रात का वेला, बरसात भी शुरू है। सामने नदी है, जिस नदी का नाम सरसा नदी। इस नदी विच भी हड़ आए है, बाढ़ आई है। मुसीबत कैसी, चार चपेरे दुश्मन, बरसात, सर्दी और अगे नदी विच बाढ़, नदी विच हड़ आए है। हमला होया, हर पासे हफड़ा दफड़ी मच गई। ऐस मौके ते बहुत सारा कीमती समान और ग्रंथ और कई परिवार सिंह भी नदी विच रुड़ गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादियां दे नाल और कुछ सिखां दे नाल सरसा नदी पार करके एक पासे तुर पए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के महल माता साहब कौर जी अते माता सुंदर कौर जी इन्हां दी पालकी नूं चुक के सिख दिल्ली वाल चले गए। ते दूसरे पासे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे माता माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे एक पासे तुर पए। इस सरसा नदी दे किनारे सारा कुछ वेरू खेरू हो गया। कोई किसे पासे तुर पिया, कोई किसे पासे। सतगुरां दा सारा परिवार इस नदी दे किनारे आके विछड़ गया। इसे करके इस सरसा नदी दे कोल इस मौके दी याद विच गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा बने हैं। जो सिख संगता इस परिवार विछोड़े आके दर्शन कर दिया ने और इस काली बोली रात नूं भी याद कर दिया हैं, जिस रात इस नदी दे किनारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरु साहिबां दा सारा परिवार एक दूसरे नालों अलग हो गया। कोई किसे पासे तुरिया, कोई किसे पासे। जब आपकी औत निधान बने अति हिरन में तब जोज मारो। जब आपकी औत निधान बने अति हिरन में तब जोज मारो। जब आपकी औत निधान जब आपकी औत निधान बने अति हिरन में तब जोज मारो। जब आपकी औत निधान बने छत्री को पूत हो पामन को नाही, कह तप आवत हो जो करो, हो जो करो, हो जो करो। जब आवकी औत निधान बने। धन ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਐ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਭਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੰਗੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗੂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਟੇ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੰਗੂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਪਈ, ਇਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੰਗੂ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗੂ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੰਗੂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੰਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਗੂ ਵੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਚੰਦਾ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਲੇਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤਿ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤਿ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ बड़ी ऊंची जगह सी, चार फेरे सलाखां लगियां हन, एक पासों हवा आंदी है, शरीर नूं ठार के दूसरे पासे चली जाती। माता गुजरी दोनों साहबजादियां दे नाल ठंडे बुरज विच कैद हन, चार फेरियां दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं देंदा। दोनों साहबजादे अपनी दादी मां दे कोल हन। साहबजादा फतेह सिंह दादी मां कोल उठे, सलाखां नूं पकड़ के कहन लगे, दादी मां असी सलाखां तोड़ के इथों निकल चलते हैं, ये सलाखां तोड़ के इथों निकल चलते हैं, तुर चलते हैं। ता माता गुजरी कहन लगे, बेटा जावांगे कित्थे, हर पासे दुश्मन है, ना तुहाडे वीरां दा पता, ना तुहाडे पिता दा पता, कोई सिख सेवक भी नहीं, हर पासे दुश्मन है, किधर जावांगे। साहबजादे रात बहुत हो गई सी, दादी मां दी गोद विच सिर रख के लम्मे पै गए। माता गुजरी ने एक हाथ एक साहबजादे दे सिर ते रखे है, दूसरा हाथ दूसरे साहबजादे दे सिर ते रखे है। कंध दे नाल टोला के माता गुजरी सोचां विच गुम हन, और साहबजादे दादी मां दी निघी गोद विच सिर रख के सुते हन। और इस वेले सरहंद दा ही रहण वाला बाबा मोती राम मेहरा पहरेदारां नूं कुछ लालच दे के ठंडे बुरज कोल पहुंचिया, आवाज मारदा है, माता जी माता जी। ता माता गुजरी आवाज सुन के कहंदे ने, भाई कौन है बोलन वाला, दुश्मना दे विच ए आवाज कोई अपनी लगी है, इस आवाज विच अपनापन जापे है। ता मोती राम मेहरा बोलिया, माता जी मैं मोती राम मेहरा हां, दुध लेके आया। ता माता गुजरी ने कहा, बेटा क्यों आया दुध लेके, जे तेनू किसी ने देख लिया तो उन्हें छड़ना नहीं। ता मोती राम मेहरा हाथ जोड़ के कहंदा, ऐ माता गुजरी असी ओह लोग हाँ जिन्हां नूं समाज ने नीवा कह के ठुकराया, असी चीवर जाति दे आ, मेहरा जाति दे आ। ऐ माता गुजरी असी ओह लोग हाँ जिन्हां नूं समाज ने हमेशा ठोकरा मारियां, नीच कह के दुदकारिया, पर ऐ माता गुजरी तुहाडे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू अपने गल दे नाल लगाया, अमृत दी दात दिती, ऊच नीच खत्म करके एक थां दिती, एक रूप दिता। ऐ माता गुजरी ए एक जान ते की हजारा जाना तुहाडे चरणा तो कुर्बान। साहबजादिया दुध पिया के मोती राम मेहरा तुरन लगा, ते माता गुजरी ने बोल कहे, तन मोती जिन पुन कमाया, गुरु लाला ताई दुध पियाया। मोती राम मेहरा दुध पिया के रात दे अंधेरे विच ही वापस चला गया। दूसरे पासे दिन चढ़िया, साहबजादियां नूं लैण वास्ते सरहंद दा जिहड़ा नवाब है इहदे बंदे आ पहुंचे। माता गुजरी ने दोनों साहबजादियां नूं अपने हत्थां नाल तैयार करके तोरिया, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਭਾਵ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਓ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਰ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਾਨੇ ਅਤਿ ਹਿਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੋਜ ਮਾਰੋ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਾਨੇ ਅਤਿ ਹਿਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੋਜ ਮਾਰੋ। ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਭਰੇ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਰਨ ਦੀ, ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਛੱਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹਾਂ, ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾਹੀਂ, ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। डरावे भी दिते गए, पर साहबजादे मुसलमान बनन वास्ते ना तैयार हुए। आखिर ए फतवा दिता गया साहबजादियां नूं शहीद किया जाए, जिउंदियां नूं दीवार विच चिण दिता जाए। उस वेले मलेरकोटले का नवाब भी बैठा सी, उसने कहा यह जुलम है, ये बच्चे जिन्हां दी उम्र 10 साल तो भी थले है, नीयां विच इन्हां नूं चिण के खत्म करना ये इस्लाम के खिलाफ है, ये धर्म नहीं। उस वेले सुचा नंद बोलिया, नवाब साहब ये सप के बच्चे हैं, सप के बच्चों नूं जिउंदियां ही मार देना चाहिए। इस सारे दरबार विच एक नवाब है मलेर कोटले का, जिहड़ा कहिंदा ये जुलम है नहीं करना चाहिए, पर सुचा नंद सरहंद का नवाब और काजी ये सारे कहिंदे हन कि साहबजादियां नूं शहीद करना चाहिए। आखिर फैसला हो गया, इट्टां मंगाईआं गईआं, साहबजादियां नूं नीहां विच चिण दित्ता जाए, जुल्म करन लगे हैं। देखदे आ कि जुल्मी लोग ये नहीं सोचते असी की कर रहे हैं, वो जुल्म करते हैं, पर सदके जाइए उन्हां सूरमियां तों जड़े जुल्म दे अगे कदी हारदे नहीं। जब आपकी औत निधान बने अति हिरन में तब जोज मरो, जब आपकी औत निधान बने अति हिरन में तब जोज मरो, जब आपकी औत निधान। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਘੁਟਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਡਾ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਟ ਨਾ ਤੋੜ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਵੱਢ ਦੇ। ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਵਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਜਦ ਇੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ, पर पहला तू शहीद हो चले। ए दलेरी वाली गल सुनी, अपने आप नु सुरमे कहण वाले दंदा थले उंगलियां लैण लग पे। आखिर दोनों साहबजादियां ने नीहां दे विच दीवारां दे विच चिण दिता गया। दोनों साहबजादे शहीद हो गए। एक काली बोली, ए पापां दी हनेरी उठी, जालमां ने जुलम दी हद कीती। दोनों साहबजादे नीहां विच चिणे गए, शहीद हो गए, पर उन्हां धर्म नहीं हारिया। जद माता गुजरी नूं पता लगा दोनों साहबजादे शहीद हो गए ने, तां माता गुजरी जी ने चौंकड़ा मारिया सी और सिमरन करदिआं अपना शरीर त्याग दिता। साहबजादे शहीद हो गए, आपा वार गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जद इस शहीदी का पता लगा तो सतगुरां ने उस वेले कहा सी, मेरे बच्चे मरे नहीं वो जिउंदे हैं, अपना खून दे के खालसे पंथ की नींह नूं महल नूं होर पक्कियां कर गए ने। साध संगत, साहबजादे शहीद हो गए। शहीदी तो बाद बाबा मोती राम मेहरा जिन्हां साहबजादियां की सेवा कीती सी उन्हां नूं भी कोल्हू विच पीड़ दिता गया। हुण सरहंद फतेहगढ़ साहब जिथे साहबजादियां की याद विच गुरुद्वारे बने हैं, उत्थे नाल बाबा मोती राम मेहरा की याद विच भी सिख संगतां गुरुद्वारा बना रही हैं। ये यादगारां याद करांदियां हैं धर्म के नां ते। दुनिया के भले वास्ते जिहड़े मरदे हैं, किस तरह संसार उन्हां दी पूजा करता है। अज दा कीर्तन अपने वास्ते हर कोई जिउंदा है, पर जिहड़ा किसी वास्ते मरदा है, किसी वास्ते जिउंदा है, रहिंदी दुनिया तक लोग उन्हां दी पूजा करदे हैं। जिउणा अणख दे नाल, पर मंगणा सरबत दा भला। जुल्म करना नहीं, जुल्म सहना नहीं, अपने धर्म च पक्कियां रहना, पर अदब मान सब दा करना। सतगुरु जी कहिंदे हन, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, क्यों किसे नूं माड़ा कहिए। आप ठीक होइए, अपना जीवन उच्चा करिए, आप सुखी वसीए, दूसरियां नूं सुख देइए, जीविए अणख दे नाल, और मंगिए सरबत दा भला।
जब आपकी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मारो। जब आपकी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मारो। जब आपकी औध निधान
सरहंद दे इस साके नूं ना भुलियां हन, ना कदी भुलाणगियां, क्योंकि सरहंद दे इस साके दे नाल सिख संगतां दे दिलां दियां तारां जुड़ियां हन। क्योंकि कलगियां वाले दे साहबजादे इत्थे नीहां विच चिणे गए, जिहड़ियां संगतां गुरु दे चरणां तों अपना आप कुरबान कर दिंदियां हन, भला ओ संगतां इह अस्थान किवें भुल सकदियां हन।
जब आपकी औध निधान बने अति हिरण में तब जोज मारो। जब आपकी औध निधान